नमस्कार भारत, तारीख 25 अक्टूबर दिन गुरुवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरे नेताओं के घर भेजी जा रही विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई। क्या प्रधानमंत्री मोदी की वजह से सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा छुट्टी पर भेजे गए?
क्या नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले उन्होंने उनको कुछ रफेल के बारे में कहा, या अगर उन्होंने कहा होगा तो वो तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की बात है।
मध्य प्रदेश चुनावों में नई पार्टियों की दस्तक, लेकिन कितने वोट बटोर पाएंगी?
वास्तव में जयेश और सपा की जो स्थिति है वो जीतने से ज्यादा हरानीति में है। जयेश कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।
साथ ही दुनिया जहां में बात होगी भूटान चुनावों की, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अमरीकी खुफिया सेवा के मुताबिक अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर पर दो संदिग्ध पैकेट भेजे गए थे। इन पैकेट्स में विस्फोटक सामग्री बताई जा रही है। इसी तरह के पैकेट सीएनएन न्यूज चैनल के दफ्तर और अन्य नेताओं व अधिकारियों के घर पर भी भेजे गए थे। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में एफबीआई, कानून मंत्रालय और खुफिया सेवा के साथ बैठक की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि तुर्की में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या मामले में सभी जिम्मेदार अपराधियों को सजा दी जाएगी। सऊदी अरब के खाशोजी की हत्या की बात स्वीकारने के बाद क्राउन प्रिंस की यह पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। राजधानी रियाद में एक बिजनेस फोरम में बोलते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी के सभी लोगों के लिए यह अपराध दुखदाई है और मुझे यकीन है कि यह दुनिया में हर इंसान के लिए दुखदाई होगा। यह एक जघन्य अपराध है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज सऊदी अरब जांच पूरी करने, तुर्की की सरकार को सहयोग करने और अपराधियों को कोर्ट पहुंचाने के लिए सभी कानूनी तरीके अपना रहा है। ये थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शब्द। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के प्रमुख मार्जुकी डारुस्मान का कहना है कि म्यांमार में रह रहे करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान नरसंहार का अब भी सामना कर रहे हैं। मार्जुकी डारुस्मान ने 2 महीने पहले म्यांमार के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक रिपोर्ट भी जारी की थी। उनका कहना है कि अभी तक रोहिंग्याओं के साथ व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, हमारी रिपोर्ट बताती है कि रखाइन प्रांत में हुई मानवाधिकार आपदा जैसी घटनाएं योजनागत थीं। इनका आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यहां बड़े स्तर पर गैंगरेप किए गए, लोगों को जलाया और लूटा गया। ये थे म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के प्रमुख मार्जुकी डारुस्मान। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक अब्दुल गनी बरादर को जेल से रिहा किया जा रहा है। अब्दुल गनी पाकिस्तान की जेल में बंद है। वह मुल्ला उमर के तहत तालिबान के दूसरे नंबर के नेता रह चुके हैं। उन्हें 8 साल पहले कराची से हिरासत में लिया गया था। अर्जेंटीना की पुलिस ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए रबड़ बुलेट और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। यहां हजारों लोग अगले साल के बजट में समाज कल्याण योजनाओं में की गई कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में बजट पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन इस टकराव के कारण उसे रोक दिया गया। वहीं सरकार का कहना है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अरबों का कर्ज लेने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कटौती करनी पड़ी है। इराक में देर रात संसदीय सत्र के दौरान कैबिनेट के आधे से ज्यादा प्रस्तावित सदस्यों को स्वीकृति दे दी गई। चुनाव होने के 5 महीनों बाद भी इराक में रक्षा और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद भरे जाने बाकी हैं। इराकी प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी को अगले महीने की शुरुआत तक अपनी कैबिनेट को अंतिम रूप देना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपिओइड की लत छुड़ाने के लिए तैयार किए गए कुछ जरूरी उपायों को कानूनी रूप देते हुए उन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओपिओइड में कई तरह के ड्रग्स शामिल होते हैं। इसमें दर्द से राहत देने वाली दवाइयां भी आती हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। भारतीय समयानुसार बीती रात अमेरिका में तब हड़कंप मच गया जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के घर पर संदिग्ध पैकेट भेजे जाने की बात का पता चला। अमरीकी खुफिया सेवा के मुताबिक इन पैकेट में विस्फोटक सामग्री भेजी गई थी। ये पैकेट उनके घर पर पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए, लेकिन इसी तरह के और पैकेट कई नेताओं और अधिकारियों के घर पर भी भेजे गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या कदम उठा रही है अमरीकी सरकार, सुने कमलेश मठेनी से।
अमरीकी खुफिया सेवा के मुताबिक अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर पर विस्फोटक सामग्री भेजी गई थी। दो पैकेट्स में आई इस सामग्री को उनके पते पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। खुफिया सर्विस के कर्मियों ने बीच में ही इनका पता कर लिया था। इसी तरह के पैकेट अन्य नेताओं और अधिकारियों के घर पर भी भेजे गए थे। दो दिन पहले ही जाने माने निवेशक जॉर्ज सोरोस के न्यूयॉर्क स्थित घर पर एक पाइप बम भेजा गया था। न्यूज चैनल CNN के न्यूयॉर्क स्थित दफ्तर में भी ऐसा ही एक पैकेट मिलने के बाद दफ्तर को खाली करा दिया गया। इस बारे में न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर जेम्स ओनील ने बताया, आज न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने CNN में मिले संदिग्ध पैकेज की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैनहट्टन साउथ ने जल्द ही पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया और बिल्डिंग में तलाश शुरू कर दी। यहाँ एक डिवाइस मिला जो विस्फोटक जैसा था। इसके अलावा एक लिफाफा था जिसमें सफेद पाउडर था जो उसी पैकेट का हिस्सा था। ये थे पुलिस कमिश्नर जेम्स ओनील के शब्द। इस घटना की सूचना मिलने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया सेवा के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया को इस मामले में हो रही जांच की जानकारी दी और अमरीकी लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी लोगों की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी कुछ ही समय पहले FBI, कानून मंत्रालय और खुफिया सेवा से इस संबंध में बात हुई है। विस्फोटकों के शीर्ष जानकार उन पैकेट्स का निरीक्षण कर रहे हैं। हम इस मामले की जांच में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें नहीं बख्शेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें एक होकर रहना होगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने इस घटना को अमेरिका की प्रेस और नेताओं को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकी कोशिश बताया है। CNN के वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट जेफ जकर ने इस घटना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स की आलोचना की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उसके द्वारा मीडिया पर लगातार किस तरह के हमले किए जा रहे हैं। वहीं फ्लोरिडा में एक कैंपेन के दौरान बोलते हुए हिलेरी क्लिंटन ने खुफिया सेवा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो और उनका परिवार सुरक्षित है।
अमरीकी नेताओं के घर भेजी गई विस्फोटक सामग्री, अधिक जानकारी दे रही थी कमलेश मठेनी। आते हैं भारत, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को लेकर विवाद जोरों पर है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद परसों देर रात केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया और संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक तैनात कर दिया। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि ये फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBI की निष्पक्षता पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने BBC से कहा,
सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्वायत्तता निष्पक्षता पर व्यक्तिगत तौर से आक्रमण कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, मोदी अमित शाह की जोड़ी CBI कहीं की नहीं छोड़ी। कारण बड़ा सीधा है, CBI के डायरेक्टर ने रफेल घोटाले के कागज मांगे थे और रफेल घोटाले के भ्रष्टाचार की परतें खुल रही थी।
वहीं कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार रहे अरुण शौरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डर की वजह से CBI निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा है। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने अरुण शौरी से इसकी वजह पूछी।
हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी जो कि CBI के डंडे से डरा रहे थे, ये हरिशंकर व्यास हमारे दोस्त थे, वो ये कह रहे थे, तो यही हुआ है कि भी उनको डर था कि भी अगर उनका जो खास आदमी है अस्थाना उस पर बहुत प्रेशर पड़ा तो कहीं वो चीजें डिस्क्लोज ना करें। उनको ये डर लगा कि अगर आलोक वर्मा जैसा इंडिपेंडेंट ऑफिसर राफेल पर इंक्वायरी कर देता है तो और उनको पता होगा कि इसकी कोई इसको इंक्वायरी शुरू करने के लिए परमिशन वगैरह नहीं चाहिए, ये कर सकता है, तो फिर बेचारों की बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि आलोक वर्मा इनसे दबने वाला नहीं था। मगर अब इन्होंने पहाड़ अपने ऊपर एक एवलांश अपने ऊपर करवा लिया है, गिरवा लिया है, इसके कई नतीजे होंगे आगे चलकर।
लेकिन जिस तरीके से देर रात में ट्रांसफर हुआ और कुछ जो अधिकारी अस्थाना जी की जांच कर रहे थे उनको पोर्ट ब्लेयर तक ट्रांसफर कर दिया गया,
कोई चिट्ठी गई थी या नहीं, वो अगले कुछ दिनों में बाहर निकलेगी। आलोक वर्मा के जैसे आर्ग्यूमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो जरूर पेश करेंगे कि भी कैसे क्या क्या वाकयात हुए, क्या उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी डॉक्यूमेंट्स के लिए राफेल के बारे में, क्या नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले उन्होंने उनको कुछ राफेल के बारे में कहा, या क्योंकि अगर उन्होंने कहा होगा तो वो तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की बात है और वो हमारे कानून में की नजर में वो एक बिल्कुल क्राइम है, अपराध है।
जो सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी होने की परसेप्शन है उस पर फर्क पड़ेगा,
तो कोई इनकी छवि अभी तो रही नहीं। पिछले साल डेढ़ साल में जो जो यहाँ से भागे हैं 9,000 करोड़ 12,000 करोड़ लेकर, वो सब इन्हीं के कुनबे के हैं, इन्हीं के नेबरहुड के हैं, तो कौन बिलीव करता है आज ये अमित शाह के लड़के के बारे में जो चीजें बाहर आई, अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो चीजें बाहर आई। नीरव मोदी आपके और मेरे दोस्त तो नहीं है, चौकसी आपके और मेरे दोस्त तो नहीं है, मल्या को कैसे भेजा गया बाहर, चौकसी के रिटेनर किसने लिया, आपने तो नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, वो सब इन्हीं के लोग ले रहे थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी। इस पूरी घटना के बाद सीबीआई की छवि को ठेस लगने जैसे सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में इससे सीबीआई की छवि धूमिल हुई है और उसे स्थापित कैसे किया जा सकता है? ये सवाल हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता से पूछा।
बहुत ही खराब हो गया, ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी है ये भारतवर्ष के सबसे जाने माने जांच एजेंसी है, अभी भी आम आदमी ये जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। और ठीक है, ये सरकार, इससे पहले भी सरकार लोग अपने जो विरोधी दल में रहते हैं इनके खिलाफ केस लगाते हैं, और एक तरह से सीबीआई एक तरह से एक इसमें राजनीति आ जाता है बहुत, जिस तरह से हमारे देश के जो सत्ते में है राजनेता, फिर भी आम आदमी सीबीआई के जांच के ऊपर बहुत भरोसा है। आज ये सीबीआई का छवि तो खराब ही हो गया, साथ साथ मोदी सरकार का छवि भी एकदम खराब हो गया।
आलोक वर्मा राफेल डील को लेकर के कोई जांच करने वाले थे, ये विपक्ष का दावा है, तो क्या आपको लगता है कि राफेल की आंच अब जो है ऊपर तक पहुंचने लगी है?
ये सच है कि जो विरोधी दल में है, आम आदमी पार्टी कहिए, कांग्रेस पार्टी कहिए, सीपीएम कहिए, सब लोग कह रहे कि हाँ आलोक वर्मा को हटा दिया क्योंकि वो राफेल घोटाला में जांच करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है और सब सवालों के घेरे में है, जो दूसरों पर भ्रष्टाचार की जांच करते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अधिकारी का काम है कि जो भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ जो आरोप लगा है इसके ऊपर जांच करे, इनको अदालत ले जाए, इनके ऊपर एक तरह से सख्त कार्रवाई करना, एक इसके ऊपर अगर सजा देना है तो अदालत जाके इसके प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे, इन सब ऐसे लोगों को खिलाफ आज बहुत गंभीर आरोप लग गया। पास आप सब लोग जानते हैं राकेश अस्थाना जी गुजरात काडर के हैं, वहाँ के बड़े बड़े शहर में पुलिस कमिश्नर थे, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम था वो जो गोधरा कांड के बाद जो जांच हुई थी गुजरात सरकार ने किया, ये राकेश अस्थाना जी का नेतृत्व में होता, तो एक तरह से मोदी जी के करीब लोग समझते हैं कि बहुत ही करीब है। और राहुल गांधी ये भी कह दिया उनका ब्लू आईड बॉय, यानी कि बहुत ही नजदीक है, तो इसमें एक तरह से एक छवि बन गया कि पूरा सरकार राकेश अस्थाना जी को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है।
सीबीआई की छवि को कितना नुकसान, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो विपक्ष भी सीबीआई और रफाल विमान जैसे मुद्दों को अपनी रैलियों में खूब उठा रहा है। राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सियासी गढ़ झालावाड़ में रैली की, वहीं भाजपा ने इस रैली को असफल बताया। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
खेती में सरसब्ज इस इलाके में बीजेपी का सियासी दबदबा रहा है, शायद इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में थे। गांधी ने झालावाड़ की भीड़ भरी सभा में न केवल मुख्यमंत्री राजे पर निशाना साधा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर प्रहार किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में खेती किसानी और रोजगार के साथ रफाइल विमान सौदे पर भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में अधिकारी को हटाने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की।
चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। भाइयों बहनों, आपको लहसुन का दाम नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का किसान दिन भर काम करेगा। आपको बैंक के सामने नोटबंदी के टाइम आपको बैंक के सामने खड़ा करेंगे, आपसे कहेंगे काले धन के खिलाफ लड़ाई है। उस लाइन में आपको विजय माल्या नहीं दिखेगा, ललित मोदी नहीं दिखेगा, नीरव मोदी ना, मेहुल चौकसी नहीं, अनिल अंबानी नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी सभा के बाद झालावाड़ से कोटा तक का रोड शो भी किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी थे। कांग्रेस अध्यक्ष आज दूसरे दिन भी राजस्थान में लोगों से मुखातिब होंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र झालावाड़ पर खासा ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री राजे झालरापाटन से विधायक हैं तो उनके पुत्र दुष्यंत सिंह संसद में झालावाड़ की नुमाइंदगी करते हैं। इस इलाके को वसुंधरा राजे के लिए अजेय माना जाता है। उधर सत्तारूढ़ बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर बेफिक्री दिखाई है। बीजेपी कहती है कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जबरदस्त गुटबाजी है। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं राहुल गांधी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं।
बार बार आकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान के नेता जो पूर्व में कांग्रेस को अब कांग्रेस को चला रहे हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई संदेश नहीं है, एक बोरियत भरा हुआ वही रटा रटाया भाषण। उनके पहले भाषण को अंतिम भाषण को देख लोगे तो सम्मान मिलेगा। उनके आने से राजस्थान की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उल्टे का उनकी पूरी बातों को सुनकर कांग्रेस के जो लोग जाते हैं उनके में निराशा का भाव आता है।
राज्य में कोई सवा माह बाद मतदाता नई सरकार चुनेंगे। इन चुनाव में किसे तख्तोताज मिले इसे लेकर दोनों पार्टियां जोर लगा रही है, लेकिन मतदाता अभी मौन साधे हुए है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहां कांग्रेस और भाजपा के अलावा कुछ नए दल भी मैदान में हैं। सपाक्स यानी कि सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसने अब सपाक्स समाज पार्टी बना ली है। वहीं जय आदिवासी युवा संगठन यानी कि जयस पार्टी भी आदिवासी इलाकों में अपनी किस्मत आजमा रही है। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफत के साथ ही सपाक्स समाज पार्टी का जन्म हुआ। इस पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में हुए बंद के दौरान इन्हें अच्छा खासा समर्थन मिला, जिसके बाद इन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला किया। हालांकि कई लोग इस पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, ताकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पड़ने वाले वोट प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के बजाय इनके पास चले जाएं। लेकिन पार्टी अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि उनका मकसद साफ है।
आज जितने राजनीतिक दल हैं वो तुष्टिकरण की नीति पे चल रहे हैं, वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए वो इस हद तक जा रहे हैं कि उन्होंने इस भारतीय समाज को जातियों में बांट दिया है और इस समाज को वर्ग संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ एक अन्य दल जय आदिवासी युवा संगठन जयस पार्टी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी अपने प्रत्याशी आदिवासी क्षेत्रों में उतारेगी। इनकी बातचीत अभी कांग्रेस से जारी है और पार्टी का समझौता भी हो सकता है। पार्टी कांग्रेस से 46 सीटें मांग रही है। इस पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा अपने आप को आदिवासियों के हित में लड़ने वाला बता रहे हैं।
तो हमारे मुद्दे है पलायन के मुद्दे। आदिवासियों के पलायन क्यों हो रहा है? आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी बच्चे कुपोषण से क्यों मर रहे हैं? आदिवासी इलाकों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के देशों की तरह क्यों हो रही है? आदिवासियों की पांचवी और अनुसूची लागू क्यों नहीं की धरातल पे? कुल मिलाकर 80 सीटों पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा की पूरी तैयारी कर रखी हम लोग कर ली है।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों ही पार्टियों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि पार्टी जीतने की ताकत रखने वाले प्रत्याशियों को हरवा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया कहते हैं,
वास्तव में जयेश और सपा की जो स्थिति है वो जीतने से ज्यादा हराने की में है। जयेश कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जयेश के डॉक्टर हीरालाल अलावा अच्छी से कांग्रेस से उनकी लगातार 30-35 साल पुरानी सीट मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की बी टीम के तौर पर काम करेंगे। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि उनके पास सिंबल अलॉटेड नहीं है। यही स्थिति सपाक्स की है। आज तारीख तक सपाक्स को सिंबल अलॉट नहीं किया गया है। इसके कारण उनके प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जाना पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट 21% है। 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए प्रदेश में आरक्षित हैं। 47 सीटों में से अभी भाजपा के पास 32 और कांग्रेस के पास 15 सीटें हैं। वहीं लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 5 भाजपा के पास और मात्र 1 कांग्रेस के पास है। अब जैस पार्टी इन्हीं आदिवासी वोटों पर अपना दावा कर रही है। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी, इसलिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश के दौर से गुजर रही हैं। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ कमलेश मठेनी है साथ।
हाँ शाहिद, आज जैसे आपने बताई CBI की खबर आज अखबारों में भी छाई हुई है। हम देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग दी है सेंटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सरकार की CBI में दखल की तरफ इशारा किया है। हिंदुस्तान में हेडिंग है CBI में कोहराम। अमर उजाला में है वर्मा और अस्थाना की छुट्टी, साथ ही 13 और अफसरों के तबादले। और इसी तरह से हिंदी अखबारों में हिंदुस्तान में एक खबर है कि मीठू मामले में जो यौन उत्पीड़न के मामले आए थे उनके लिए एक मंत्री समूह का गठन कर दिया गया है, जिसमें बाल विकास कल्याण मंत्री मनेका गांधी हैं और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। अमर उजाला में खबर है कि दिल्ली में प्रदूषण का संकट बढ़ गया है। प्रदूषण का स्तर है वो 312 तक, वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 तक पहुंच गया है, जो कि खराब से बहुत खराब का स्तर है। और भी हालात जो है खराब होने की आशंका है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में 4 महिलाएं केरल हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और उनका कहना है कि हमें पुलिस से सुरक्षा प्रदान की जाए इस मामले में जब हम पूजा करने जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अखबारों की समीक्षा के लिए। अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। भारत और चीन जैसे दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच हिमालय की गोद में बसे छोटे से देश भूटान में हाल ही में संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें नई पार्टी DNT ने 47 में से 30 सीटें जीती हैं। इस सत्ता परिवर्तन का भूटान की आंतरिक राजनीति और इसके पड़ोसी देशों खासकर भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, इसी की पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श राठौर इस बार के दुनिया जहां में।
दुनिया जहां। भारत और चीन जैसे दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच हिमालय की गोद में बसा है छोटा सा देश भूटान। स्थानीय भाषा में भूटान का नाम है द्रुक्युल, यानी उड़ने और आग उगलने वाले ड्रैगन का देश। खास बात यह है कि कई सदियों तक भूटान बाकी दुनिया से कटा रहा। ये कभी किसी का उपनिवेश भी नहीं रहा। बाहरी दुनिया की बहुत कम चीजों और बातों को इसने अपनाया और अपनी संस्कृति और परंपराओं की ये रक्षा करता रहा। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात के बाद 1907 में वांगचुक वंश सत्ता में आया, जिसने देश को एकजुट किया। इसके बाद से लेकर भूटान में लगभग 100 सालों तक पूर्ण राजशाही रही, लेकिन 2006 में सत्ता संभालने वाले जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक ने 2008 में यहां दो पार्टियों वाले संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य और सिक्किम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर महेंद्र पी लामा बताते हैं कि यहां की चुनाव प्रणाली थोड़ी अलग है।
हमारी जैसी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन भी है, वहां पे चुनाव आयोग है, सभी सिस्टम हुई है। लेकिन इन लोगों ने एक अपने लिए एक शर्त रखा कि खास इलेक्शन होगा वो दो पार्टी के आधार पे होगा, है ना। और जितने भी पार्टी कंटेस्ट करना चाहते हैं वो एक प्राइमरी इलेक्शन होगा, उसमें बुनियादी इलेक्शन में वो कर सकते हैं।
हाल ही में भूटान के तीसरे संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें द्रुक न्यामरूप त्शोंगपा यानी DNT ने 47 में से 30 सीटें जीती हैं। ये वही पार्टी है जो 2013 में हुए पिछले चुनावों में पहले ही दौर में बाहर हो गई थी। रोचक बात यह है कि पिछली बार सत्ता में आने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP इस बार पहले ही दौर में बाहर हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है जो बार बार भूटान की जनता नई पार्टी को चुनती है। दक्षिण एशिया के मामलों की गहरी समझ रखने वाले प्रोफेसर एस डी मुनि बताते हैं कि इसमें जनता का असंतोष भी रहता है और कहीं ना कहीं राजा की भी थोड़ी भूमिका रहती है।
देखिए, वहाँ की जो जनतंत्र है वो राजा ने दिया है, लोगों ने मांगा नहीं था और न लोग अभी भी उससे बहुत खुश लगते हैं, इसलिए वो बदल बदल के देखते रहते हैं कि कौन सी सरकार ठीक रहेगी। एक मैं समझता हूँ कि जो राजतंत्र ने दिया है ये, वो भी ये देखना चाहते हैं कि किस तरह के लोग वास्तव में भूटान को स्थायी बना सकेंगे और उसकी प्रगति कर सकेंगे।
इस बार के चुनावों में बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे छाए रहे, लेकिन जीतने वाली डीएनटी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा कि वो अपने देश को विदेशी कर्ज से मुक्त कराने की दिशा में काम करेगी। भूटान के विदेशी कर्ज का 80% से ज्यादा हिस्सा हाइड्रो पावर फाइनेंसिंग से है और ये ज्यादातर कर्ज भारत का है। तो क्या डीएनटी के सत्ता में आने के बाद उसके रुख से भारत और भूटान के संबंधों पे कोई असर पड़ सकता है? प्रोफेसर एस टी मुनि बताते हैं कि थोड़ा असर तो जरूर पड़ेगा।
इसका प्रभाव अगर वो अपने इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं तो पड़ेगा। इकोनॉमिक एजेंडा का माने कि वो अगर हाइड्रो पावर को कम करना चाहते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज या और कुछ खोलना चाहते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा।
भूटान में चिंता सिर्फ भारत के निवेश को लेकर नहीं है। प्रोफेसर महेंद्र पीलामा बताते हैं कि उसे इस निवेश के जरिए बनाए गए पावर प्रोजेक्टों से बनी बिजली के सही दाम नहीं मिल रहे।
तो ये लोग दो डिमांड करते हैं अभी कि हमको आपका मार्केट से बाहर कोई भी अगर लेना चाहते हो मार्केट दे दीजिए और टैरिफ का रेट बढ़ा दीजिए।
लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर भूटान की संसद के पास अधिकार कितने हैं? अगर संसद का दखल है भी तो क्या चुनाव प्रचार के दौरान भारत के प्रति थोड़ा कड़ा रुख रखने वाली डीएनटी इस दिशा में सत्ता में आने के बाद कुछ करेगी? प्रोफेसर एस डी मुनि,
डीएनटी जीती है, उस जीतने में उनको ज्यादा वोट पीडीपी के मिले हैं जिसको भारत मुखी कहा जाता है, इसीलिए उनका जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा कुछ भी रहा हो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको ये भी पता है कि उनका जो वोट बैंक हो गया है नया उसमें भारत मुखी लोगों का ज्यादा समर्थन है।
रणनीतिक रूप से बेहद अहमियत रखने वाले भौगोलिक क्षेत्र में होने के कारण भूटान कई बार भारत और चीन की रस्साकशी के बीच भी फंसता रहा है। दक्षिण एशिया में भारत और चीन की आपसी होड़ किसी से छिपी नहीं। पिछले साल डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध भी बना हुआ था। ऐसे में नई सरकार का रुख इस तरह के मामलों पर क्या होगा? प्रोफेसर महेंद्र पीलामा बताते हैं कि अब ये बात साफ हो गई है कि भारत और भूटान के संबंध परंपरागत ढंग से नहीं चलेंगे।
भूटान में काफी परिवर्तन आया है, यंग लोग आए हैं, नया ब्यूरोक्रेट आए है, एक नया पीढ़ी आए है राजनीति में भी। ये लोग का सोच जो 60 का दशक में 80 का दशक में था उससे काफी हद तक फर्क है और इसको अगर भारत ने ठीक तरह से नहीं संभाला तो काफी हद तक रिलेशंस में तनाव भी आ सकती है और चीन बहुत कोशिश कर रही है भूटान में जाने के लिए।
जानकारों का कहना है कि भूटान की नई सरकार की प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा और संप्रभुता को और मजबूत करने पर रहेगी। उनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र आने के बाद आज के भूटान में 90 के दशक के मुकाबले बहुत फर्क आ गया है। लोग विकास को प्राथमिकता देने लगे हैं और विकास होता नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी यहां लोकतंत्र शुरुआती दौर में है और इसे जड़ें गहरी करने में और परिपक्व होने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे आदर्श राठौर, कैसा लगा हमें जरूर लिखें। आते हैं क्रिकेट पर, जहां कल विशाखापट्टनम में खेले गए भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच टाई हो गया। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज के आगे 322 रनों का लक्ष्य रखा और वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 157 रन की पारी खेली और इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की सबसे कम पारियों में यानी कि कुल 205 पारियों में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
अमरीकी खुफिया सेवा के मुताबिक अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के घर पर दो संदिग्ध पैकेट भेजे गए थे। इन पैकेट्स में विस्फोटक सामग्री बताई जा रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि तुर्की में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या मामले में सभी जिम्मेदार अपराधियों को सजा दी जाएगी। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के मुख्य मार्जुकी डरुस्मान का कहना है कि म्यांमार में रह रहे करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अब भी नरसंहार का सामना कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलकराज भाटिया। शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।